कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरे, नश्वर तन का ना भान रहे। इस संगम युग में हम सबको बस सत धर्म का ज्ञान रहे, ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ।
ओम शांति। हम सबको प्यारे बाबा ने उड़ते कला का बहुत श्रेष्ठ साधन दिया है। हम सब जब से बाबा के बच्चे बने हैं, ये साधन जिन्होंने भी अपनाया है, अनेक बातों से, अनेक परिस्थितियों से वो सहज ही पार हो जाते हैं। बाबा के भिन्न भिन्न महावाक्य उड़ती कला के संबंध में आप सभी मुरलियों में सुनते आ रहे हैं, सुनते हैं। कई बार बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे उड़ता पंछी बनो, उड़ती कला में उड़ते रहो। वर्तमान समय जिन परिस्थितियों से हम आप सभी क्रॉस कर रहे हैं, कलयुगी संसार में जहां पांचों विकारों का फुल फोर्स है, पांचों तत्व प्रकृति के तमोप्रधान बन चुके हैं, ऐसे समय में अपनी सेफ्टी का सबसे अच्छा साधन, श्रेष्ठ साधन उड़ती कला का साधन है। ये उड़ती कला क्या है और ये हम कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं? अभी अभी बहुत सुंदर गीत हम सभी सुन रहे थे कि उड़ने और उड़ाने के लिए उमंग और उत्साह के पंख चाहिए। सबसे पहले उड़ती कला शब्द को हम ध्यान पर रखें, क्योंकि कई भाई बहने जब शाब्दिक अर्थ में चले जाते हैं तो समझते हैं शायद उड़ करके आत्मा कहीं पर पहुंच जाती है, शरीर से निकल करके कहीं उड़ करके चली जाएगी और उसका नाम ही उड़ती कला है। लेकिन उड़ती कला माना हमारी ऊंची स्थिति, संपन्न स्थिति, डबल लाइट स्थिति, जिस स्थिति में अगर हम सब स्थित रहते हैं ज्ञान और योग के पंखों से, तो सहज अनेक बातों से, अनेक समस्याओं से, अनेक परिस्थितियों से पार हो जाते हैं। जिस प्रकार यदि कोई विमान में सैर कर रहा हो, नीचे की सभी बातें, चाहे वो कितने भी बड़े पहाड़ हों, नदियां हों, शहर हों, ट्रैफिक हो, हर एक को उड़ते हुए पार कर जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमने कितनी बड़ी नदी को या पहाड़ को पार किया है। पंछी जब मुक्त होकर के आकाश में, नील गगन में उड़ते हैं, सब चीजों को क्रॉस करते जाते हैं, कोई भी रुकावट उन्हें रोकती नहीं। तो बाबा भी हम सभी बच्चों को उसी स्टेज पर ले जाना चाहते हैं। ज्ञान और योग के पंखों से, उमंग उत्साह के पंखों से, ईश्वरीय खुशी और नशे के आधार से, अगर हम अपनी स्थिति को ऊंचा बना लेते हैं, हर बात को हम सहज ही क्रॉस कर सकते हैं। कई भाई बहनों को अभ्यास है, हर एक के सामने कोई न कोई बातें सारे दिन की दिनचर्या में आती ही हैं। चाहे आप अपने लौकिक कर्म क्षेत्र में कार्य करते हैं, चाहे ईश्वरीय सेवाओं में आप अपना सहयोग दे रहे हैं, चाहे गृहस्थी में घर गृहस्त का कार्य संभाल रहे हैं, ऑफिस में दुकानों में जा रहे हैं, लेकिन हर सेवा की फील्ड में, सेवा के क्षेत्र में कोई न कोई ऐसी परिस्थितियां, ऐसी रुकावटें, ऐसे विघ्न आते हैं जो हमारे ईश्वरीय नशे को, ऊंची स्थिति को कभी न कभी नीचे ले आते हैं। बाबा ने ये जो श्रेष्ठ साधन दिया है, उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन, अगर ये स्मृति में रहता है, हमने उड़ती कला की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, तो आने वाली अनेक बातें अपने आप सहज रीति से पार हो जाती हैं, क्रॉस हो जाती हैं। इसके लिए हम आपको कुछ एक ऐसे बिंदु, ऐसी पॉइंट्स, जिन पर समय प्रसमय बाबा हमें इशारा करते आ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान और योग के पंख जितने मजबूत हैं, अथवा जितना हमने ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है, बाबा के भावों को, राजों को राजयुक्त होकर के समझा है, उतना सभी बातों को हम सहज क्रॉस कर सकते हैं। एक ज्ञान अर्थात समझ, सिर्फ बुद्धि तक नहीं, सुनने और सुनाने तक नहीं, लेकिन यदि हम उसका स्वरूप बन जाते हैं, एक एक बात बाबा ने इतनी गहराई से हमें सुनाई है, समझाई है, हम उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो अनुभव ये कहता है कि ये ज्ञान एक पंख बन जाता है जो अनेक बातों में उड़ाने में मदद करता है, ऊपर उठाने में मदद करता है। योग दूसरी शक्ति है। योग के आधार से अनेक समस्याओं को, विघ्नों को सहज रीति से पार कर लेते हैं, क्योंकि उसमें बाबा का बल हमारे साथ होता है। आज सुबह आप सभी दादी जानकी का क्लास सुन रहे थे, जिन्होंने सुना होगा मनोबल और योग बल का अंतर। एक है आत्मा का बल, एक है आत्मा के साथ साथ डबल बल, परमात्मा पिता का भी बल, जो योग बल है, जिसमें बाबा की याद समाई रहती है। श्रेष्ठ संकल्पों का बल कई अज्ञानी आत्माओं में भी है, जिनके पास संकल्पों में दृढ़ता है, शुद्धता है, वो अनेक कार्य मनोबल के आधार से सहज रीति से कर लेते हैं। बाबा ने अपने बच्चों में संकल्प शक्ति अथवा मनोबल भी भरा है, तो साथ साथ योग बल भी भरा है। हम सभी ज्ञान और योग डबल शक्तियों से संपन्न हैं। इसलिए जितना हम सब ने अपने जीवन में ज्ञान और योग को स्वरूप में लाया है, उतना सहज रीति से अनेक बातों को हम पार कर सकते हैं। ये हमारी ऊंची स्थिति की निशानी है। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन अपनाने के लिए, अथवा ऐसी ऊंची स्थिति बनाने के लिए, सबसे पहले हमें अपने बंधनों को काटना होगा। अगर आत्मा परतंत्र है, ही कोई बंधन है। स्वभाव और संस्कारों का भी बंधन है, देह और संबंधों का बंधन है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का बंधन है। तो बंधन उड़ती कला की अनुभूति नहीं करने देगा। जैसे पंछी गगन में तभी उड़ सकता है जब वो सब बंधनों से मुक्त है। कोई आकर्षण जब उसे आकर्षित नहीं कर रही है। हम सभी ब्राह्मण बाबा के बच्चे हर वर्ष एक नया साल मनाते हैं। इस वर्ष को बाबा ने संस्कार परिवर्तन वर्ष दिया। इसके पहले हम सब ने मुक्ति वर्ष के रूप में मनाया था। कैसे हम सभी अनेक बंधनों से मुक्त हों। सभी को अपने आप से ही पूछना है कि हम सभी किसी भी प्रकार के बंधन में बंधे हुए तो नहीं हैं। और उसकी सबसे बहुत अच्छी निशानी है, अगर एक सेकंड में संकल्पों पर ब्रेक नहीं लगती या हम जब चाहें बाबा के पास पहुंच जाएं, संकल्पों को संपन्न करके समाप्त करके, बस एक बाबा और एक मैं आत्मा इस स्वरूप में सहज ही स्थित हो जाएं, ये बंधन मुक्त आत्मा की निशानी है। अगर बंधन है तो कहीं न कहीं से वो बंधन अपनी ओर खींचते रहते हैं, और बंधन को काटने वाला और कोई दूसरा नहीं है। हर एक को अपने बंधनों को स्वयं ही काटना है। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे डालियों को तुमने पकड़ करके रखा है। अगर कोई पंछी किसी डाली पर बैठा हो, अपने पंजों से डाली को पकड़ा हुआ हो और ऊपर से कह रहा हो मुझे छुड़ाओ या उड़ाओ, तो कौन उसे कहेगा कैसे उड़ो। तो बाबा भी हम सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ये तुम्हारे अपने क्रिएट किए हुए बंधन है। जैसे मकड़ी अपना जाला अपने आप बुन लेती है और बुन करके उसी जाले में खुद ही फंस करके अपने प्राण दे देती है, मनुष्य आत्माएं भी कई बार अपने बंधन अपने आप क्रिएट करती हैं। कई ऐसे हिसाब किताब हैं जो चलते चलते समझ होते हुए भी परवश स्थिति में किसी न किसी विकारों के अधीन होकर के अपना बंधन बना लेते हैं। हम सब अगर बाबा की इस बात को ध्यान पर रखते हैं, बाबा कहते बच्चे अब सब हिसाब चुक्त होकर के तुम सबको मेरे साथ चलना है, घर चलना है, वापस चलना है, फिर नया बंधन हम क्रिएट क्यों करें। तो जितना आत्मा निर्बंधन स्थिति में रहती है, बंधनों को काटती जाती है, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से, योग की अग्नि से, बाबा की मदद से सब बंधन सहज समाप्त होते जाते हैं। ज्ञान का प्रयोग करें, योग का प्रयोग करें तो बंधन अपने आप कट जाएंगे। जितना आत्मा सब बंधनों से मुक्त है, मन के संकल्पों के बंधनों से भी मुक्त है, वो सहज ही उड़ती कला में अनेक परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना सकती है। तो पहली बात है कि मैं आत्मा कहाँ तक स्वतंत्र उड़ता पंछी हर बंधन से मुक्त बनी हूँ। सभी अपने अपने बंधनों को एक बार देख लें। बहाने भी अनेक बंधन बना देते हैं। शरीर का भी हरेक के साथ अपना बंधन है आत्मा के साथ, लेकिन जहाँ उमंग है, उत्साह है, लगन है, वहाँ विघ्न अथवा बंधन अपने आप कट जाते हैं। तो दूसरा एक साधन है उड़ती कला का, अंदर से जो बाबा ने हमें दिया है, जो श्रेष्ठ प्राप्तियां कराई हैं, उसकी अपार खुशी और नशे में रहना। जो जितना अपार खुशी और नशे में रहता है, ये खुशी और नशा उमंग और उत्साह के पंख बन जाते हैं। उमंग उत्साह में रहने वाली, खुशी और नशे में रहने वाली आत्माएं, आप सबको एक अनुभव होगा, जब हम शुरू शुरू में पहले पहले बाबा को पहचानते हैं, बाबा मिल जाता है, निश्चय हो जाता है, इतना नशा चढ़ जाता है कि किसी चीज की परवाह नहीं करते। जैसे एक मस्ताना अपनी मस्ती में हर बात को सहज पार कर लेता है, कोई बात की परवाह नहीं करता, ऐसे बाबा के बच्चे भी जब बाबा को पहचानते हैं, बाबा कहते हैं और उन्हें अनुभव हो जाता है कि ये तो हमें भक्ति का फल मिल गया है, भगवान मिल गया है, अभी क्या चाहिए, पाना था सो पा लिया, अभी किस चीज की परवाह है। ऐसी बेपरवाह, दुनिया से बेपरवाह आत्माएं, जो सहज रीति से अंदर के उमंग और उत्साह के आधार से सहज सब बातों को, सब बंधनों को पार कर लेती हैं, उड़ने लगती हैं, उड़ती कला की अनुभूति करने लगती हैं। कोई भी बंधन उन्हें रोकता नहीं है, कोई रुकावट उन्हें बीच में बैरियर नहीं बनती है। तो आप सभी इसके अनुभवी हैं कि कैसे हम सब बाबा को पहचानते हैं, निश्चय हो जाता है, लोक लाज कुल मर्यादाएं अपने आप हद की सब समाप्त हो जाती हैं, कोई भी चीज की परवाह नहीं रहती। इसी का नाम है उड़ता पंछी, यही उड़ती कला है। जो किसी भी बात की, दुनिया की मर्यादाओं की, लौकिक की, जहां बंधन क्रिएट हो रहे हैं, जहां हमें अच्छे मार्ग में रुकावटें आ रही हैं, अच्छी स्थिति बनाने में जो बातें रुकावटें डाल रही हैं, जो संबंध रुकावटें डाल रही हैं, बाबा के बच्चे उसकी परवाह किए बिना सहज रीति से उनसे पार हो जाते हैं, ये उड़ती कला की निशानी है। तो उमंग उत्साह के पंख, ज्ञान और योग के पंख के साथ साथ बहुत बहुत आवश्यक हैं, जो सहज ही योग के लिए भी बाबा कहते हैं कि उमंग उत्साह डबल रिफाइन पेट्रोल का काम करता है। जैसे प्लेन में अगर डबल रिफाइन पेट्रोल है तो बहुत दूर तीव्र गति से उड़ान भरता है। हम सभी भी उड़ती कला की अनुभूति के लिए रोज कोई न कोई अंदर से उमंग उत्साह का संकल्प उत्पन्न करें। जो कुछ बाबा ने दिया है उसकी खुशी और नशे में, उमंग और उत्साह में, ब्राह्मण जीवन में प्राप्तियों के खजानों की स्मृति से हम बहुत सहज उड़ती कला की अनुभूति कर सकते हैं। तीसरी एक ज्ञान की राज की बात है, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे राज युक्त बनो, और वो ऐसा राज है जो हम आप सब जान गए हैं। हम दादियों की जीवन में, ब्रह्मा बाबा की जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव करते आ रहे हैं, देखते हैं कैसी भी कोई बात हो जाए, कितनी भी बड़ी बात आ जाए, बहुत बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा हो, फिर भी उनके मुख से एक शब्द निकलता है, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, बनी बनाई बन रही, इसलिए चिंता नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति उड़ती कला की रह सकती है अगर हम सब कल्याणकारी ड्रामा के पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से इसको घोट घोट करके हमने अपना बनाया है। इस ड्रामा में हर दृश्य, हर एक बात, हर आत्मा का पार्ट बहुत अच्छा और कल्याणकारी है। बाबा हमारा कल्याणकारी, संगम युग कल्याणकारी, और मैं आत्मा कल्याण के कार्य के निमित्त हूँ। इसलिए ड्रामा की हर सीन को देखते हुए, हर दृश्य को देखते हुए, जब एक नथिंग न्यू की स्मृति रहती है। हम सभी कुछ दिन पहले दादी जानकी के साथ क्लास कर रहे थे। दादी अपना अनुभव, बाबा का अनुभव एक सुना रही थी कि बाबा के पास कोई भी बात लिख के जाओ, तो बच्ची नथिंग न्यू, समथिंग न्यू, कुछ नया हो, ये तो नथिंग न्यू, कोई पुरानी बात, ये सब पुरानी बातें हैं। जब इतना अंदर से पक्का पाठ हम कर लेते हैं, सहज उड़ती कला की अनुभूति होने लगती है। अगर किसी दृश्य को देख करके क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, वैसे अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति होती है, तो व्यर्थ का दरवाजा क्यों और क्या की उत्पत्ति है। अगर कोई की कंप्लेन है कि क्या करें, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, बहुत चलते हैं, तो उसके कारण को आप गहराई से चेक करके देखेंगे, कहीं न कहीं नेगेटिव चिंतन है, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न है। चाहे अपने भाग्य पर भी प्रश्न हो, बाबा के ज्ञान में कोई प्रश्न हो, किसी के पार्ट में हमारा कोई प्रश्न हो, जहाँ प्रश्न है, प्रश्नात्मक बुद्धि है। एक तो प्रसन्न चित्त स्थिति नहीं, और दूसरा निश्चिंत स्थिति नहीं। व्यर्थ संकल्प अपनी बड़ी लंबी लाइन में हमें खड़ा कर देते हैं, उड़ती कला का सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई आत्मा व्यर्थ संकल्पों से खुद को भारी कर रही है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ जहाँ है वहाँ भारीपन है, और जहाँ समर्थ है, शुद्ध है, वहाँ हल्कापन है। हल्की चीज अपने आप उड़ती है, अपने आप ऊपर की ओर जाती है। तो जितने शुद्ध संकल्प हैं, हल्के संकल्प हैं, सकारात्मक संकल्प हैं, उतना सहज रीति से आत्मा उड़ती कला के श्रेष्ठ साधन को अपना साधन बना सकती है। अगर कोई भी भारी संकल्प है, मन भारी है, हमारी विचार की गति अनेक संकल्पों में उलझी हुई है, संकल्प धैर्यवत नहीं है। ड्रामा के ज्ञान को हमने अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है, तो ये संकल्प बहुत भारी रहते हैं। और आपने कई बार अनुभव किया होगा, जब भारी संकल्प होते हैं तो सब कुछ भारी लगता है, वायुमंडल ही भारी लगता है, खुशी का माहौल ही नहीं लगता, कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं, कैसा माहौल है, कैसा वायुमंडल है। अगर हल्के संकल्प हैं, शुद्ध संकल्प हैं, पॉजिटिव संकल्प हैं, धैर्यवत संकल्प हैं, तो अपने आप आत्मा खुशी में ऊपर की ओर उड़ने लगती है, अपने आप बाबा की याद आ जाती है, उड़ती कला की अनुभूति होने लगती है। तो नथिंग न्यू की स्मृति। चौथी एक बात है जो आज भी दादी ने सुबह कही थी, और बाबा भी पिछली मुरली में हमारा सबका ध्यान खिंचवा चुके हैं, कि अब केवल एक सेवा रही है, वो है दुआएं देना और दुआएं लेना, सुख देना, सुख लेना। आप सभी बच्चे अपने पास दुआओं का स्टॉक जमा करो, सबको सुख दो। पहले लो दुआएं, फिर दूसरों को दो, इसमें पहले लो। जितना पुण्य कर्म हम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, जितना हम एक दूसरे को साथ देते हैं, मदद देते हैं, शुभ चिंतक बन करके रहते हैं, जितना आगे बढ़ाने की हरेक के प्रति भावना तीव्र होती जाती है, समय पर साथ देते, मददगार बनते हैं, اتنا دعائیں ملتی ہیں. اور وہ دعائیں اگر ہمارے پاس ہیں تو کوئی رکاوٹ مجھے اڑتی کلا میں اپنی اور کھینچ نہیں سکتی. آپ نے کئی بار ایک انوبھو کیا ہوگا, یوگ میں کئی بار ہم بیٹھتے ہیں, بیٹھتے ہی اتنے آنند کی انوبھوتی ہوتی ہے, اتنے سکھ کی انوبھوتی ہوتی ہے, کہتے پتہ نہیں آج کیا ہے, کیوں آج سہج یوگ لگ گیا, ہم نے محنت نہیں کی, بیٹھے اور بابا نے جیسے کھینچ لیا. بابا تو کھینچتا ہی ہے, لیکن پنیہ کرم جن آتماؤں کو سکھ پہنچا ہے, جو کسی بھی پرکار سے دعا دے رہی ہیں, ان کے دعاؤں کے وائبریشن بہت سہج ہمیں اس دیہ سے ہلکا بنا دیتے ہیں, آتما کو اڑتی کلا میں اڑا لیتے ہیں. اس لیے برہمنوں کو یہ کام ملا ہے کہ اب سب کی دعائیں لیتے چلو اور سب کو اپنی طرف سے دعائیں دیتے چلو, سب کا بھلا ہو, سب کا کلیان ہو, سب بچے آگے بڑھیں. جیسے بابا کی بہت بے حد کی بھاونائیں ہیں, ہماری دادیوں کی ہم سب کے پرتی بہت اچھی اٹوٹ بھاونائیں ہیں جو ہم سب کو فیل ہوتی ہیں, ہر دم ان کی بدھی میں رہتا ہے کہ یہ سب بابا کے بچے اتنے پرفیکٹ, اتنے سمپن بن جائیں جو ان میں کوئی بھی داغ نہ رہے, بابا کو پرتیکش کرنے والے بن جائیں, سچے ہیرے بن جائیں. تو یہ سب دعائیں دے رہی ہیں, ہم اگر یہ دعائیں لیتے چلیں اور اسی طرح سے سب کو دعائیں دیتے چلیں تو اڑتی کلا میں سہج ہی اڑنے لگیں گے. اس کے لیے ایک اور مما کا سلوگن میں آپ کو سنا دیتا ہوں. مما ہمیشہ ایک بات جس بات سے آگے بڑھی, نمبر ون لیا, سرسوتی کی ڈگری پراپت کر لی, مہا منتر کے روپ میں حکمی حکم چلا رہا ہے, جو حکم جو آگیا جو بابا نے شریمت دی ہے, جو کہہ رہا ہے. میں کئی بار اپنی کلاسز میں ایک بات کہتا ہوں, بابا کہتا کیا ہے اور ہم کرتے کیا ہیں. ہم سب ایک بار پوچھیں اپنے آپ سے, جو کچھ بابا مرلیوں میں کہتا ہے, جو کچھ ہم سب کو کہہ رہا ہے, کیا ہم اسی پرکار اسی پرمان چل رہے ہیں کر رہے ہیں. اگر بابا جیسا کہتا ہے ویسا کرتے چلیں تو اور کوئی بھی وشیش پرسارتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو کچھ کہہ رہا ہم کر رہے ہیں, جو حکم جو آگیا سر ماتھے. بابا نے کہا ہے ہمیں کرنا ہے, ہمیں ہی کرنا اور کون کرے گا. اگر اس بات میں ایک اندر سے لگن لگ جاتی ہے, آگیاکاری بن کر کے ہم رہتے ہیں, ہر آگیا چاہے وہ امرت ویلے اٹھنے کی آگیا ہے, چاہے روز کلاس کرنے کی آگیا ہے, یوگ میں بھوجن بنانے اور کھانے کی آگیا ہے, کرم میں یوگ کی کرم کرتے یوگ میں رہنے کی آگیا ہے, ساتھ نبھاتے نیارے اور پیارے رہنے کی آگیا ہے, بہت سی آگیاں بابا ہم سب کو دیتا اور کرتا ہے. روز آگیاں ہمیں ملتی ہیں, سپوت بچے آگیاکاری بچے اگر سپوت بن کر کے چلتے ہیں, جو جتنا سپوت ہے ہم کہتے ہیں اس کے لیے اڑتی کلا کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے, وہ اپنے آپ اڑتا رہتا ہے, اس کا یوگ سہج ہی لگ جاتا ہے. آگیاکاری کو سب سے بڑی بات بھگوان کی دعائیں ملتی ہیں, پرماتم دعائیں جس کے ساتھ ہوں, جس کے اوپر ہزار بھجاؤں والے کا ہاتھ ہو, باپ اور دادا کا ہاتھ ہو, بڑے بھائی اور بہنوں کا ہاتھ ہو, یہی ہاتھ چھتر چھایا بن جاتا ہے. بہت سہج ہی انیک مصیبتوں سے پار کر دیتا ہے, انیک مصیبتیں سماپت ہو جاتی ہیں, انیک وگھن ٹل جاتے ہیں. اگر وگھن پر وگھن کسی کے آگے آتے ہیں, ایک وگھن پورا ہوتا ہے دوسرا آ جاتا ہے, ایک رکاوٹ سماپت ہوتی ہے دوسری کھڑی ہو جاتی ہے, आप थोड़ा सा विचार करें, क्या मैं आत्मा कहीं भी किसी भी तरह से किसी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रही हूँ। एक बहुत अच्छी बात है, छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी है। अगर बाबा के कोई बच्चे बाबा के बन करके, बाबा के पालना में पल करके, ज्ञान और योग की पालना लेकर के, ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके, खा करके, कोई छोटी थोड़ी सी भी यज्ञ की ग्लानी, बाबा की ग्लानी करता है, तो सबसे बड़ी बद्दुआ गुप्त रूप में भगवान की उसे प्राप्त हो जाती है, ग्लानी करने वाले की। और वो आत्मा हमेशा नेगेटिव ही सोचती रहती है। अगर किसी की चढ़ती कला या उड़ती कला नहीं है, खुशी का अनुभव नहीं है, तो जरूर कहीं न कहीं से अवज्ञाएं हो रही हैं। और वो इस रूप में अवज्ञाएं हो रही हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जिस यज्ञ से पालना ले रहे हैं, जिस ज्ञान को हम सुन और सुना रहे हैं, अगर हमारा उसमें ही थोड़ा भी संशय है, हमारा उसमें ही कोई नेगेटिव प्रश्न है, अंदर से हम उस ज्ञान से, उस राजों से, उस परिवार से, उस बेहद बाप से अंदर से संतुष्ट नहीं है, कुछ न कुछ ऐसे संकल्प चल जाते हैं परिवार के प्रति नेगेटिव या ज्ञान के प्रति उल्टे संकल्प, तो ये ग्लानी कहलाता है। और ये ग्लानी करने वाली आत्माएं बोझिल होने के कारण उड़ती कला में उड़ नहीं पाती है, उड़ती कला के पंख नहीं लग पाते। इसलिए हम सब बाबा को के बच्चों को कहीं से भी कोई, हम सब बाबा का नाम बाला करने वाले हैं, ग्लानी का कर्तव्य न करें। कोई हमारी चलन, हमारा व्यवहार, हमारा खान पान ग्लानी कराने वाला न हो, बाबा का नाम रोशन करने वाला हो, तो सहज रीति से हमारी उड़ती कला हो जाएगी, सहज हो जाएगी, क्योंकि भगवान की गुप्त दुआएं, आशीर्वाद हम सब बच्चों को प्राप्त होती हैं। जैसे बाबा कहते हैं, बहुत बच्चे प्यार से गुड मॉर्निंग करो। आज बाबा ने कहा, सवेरे आंख खुलते ही कहो बाबा गुड मॉर्निंग। और जितने उमंग उत्साह से, सच्चे दिल से बाबा से गुड मॉर्निंग की, बाबा की गुड मॉर्निंग में ही सब दुआएं हैं। आज्ञाकारी बच्चे बने, आंख खुलते ही पहले संकल्प में बाबा की याद आई, क्या होगा, भगवान की दुआएं मिल जाएंगी और वो दुआएं उड़ती कला में उड़ा देंगी। इसलिए हुकुमी हुकुम चला रहा है, जो हुकुम है, जो आज्ञा है, जिस प्रकार से बाबा हमें कहे, जो मुरली में कह रहा है, मुझे कुछ भी हो जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ भी त्याग करना पड़े, बाबा ने कहा है, बाबा के लिए कर रहा हूँ, बाबा के कहने अनुसार, श्रीमत अनुसार कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक साधन है। आज्ञाकारी बच्चे उड़ती कला में उड़ने लगते हैं, बाबा के पास सेकंड में पहुंच जाते हैं। और एक सातवीं बात मैं आपको बता दूं, बहुत सार रूप में बहुत विस्तार हो रहा है, हर चीज का विस्तार हो रहा है, सेवाओं का भी खूब विस्तार हो रहा है, संस्कारों के टकराव का भी विस्तार है, माया की अनेक परिस्थितियों का विस्तार है, भवकों का, जिसको बाबा कहते हैं, माया का बहुत बड़ा पाम्प है, सब प्रकार के विस्तार में सार स्वरूप को ग्रहण करना, सार को देखना, सार स्वरूप स्थिति ही उड़ती कला का साधन है। अगर कोई उड़ता पंछी बनना चाहता है, उड़ना चाहता है, कैसे, एक सेकंड में, बाबा कहता बच्चे सकाश दे करके आ जाओ, एक सेकंड में साक्षात्कार करा के आओ, एक सेकंड में किसी आत्मा को अशांत से शांत कर दो, दुखी को सुखी बना दो, परेशान आत्मा की परेशानी दूर कर दो। जो पिछली मुरली आप सबने सुनी है, मनसा सेवा के लिए विशेष प्रेरणाएं बाबा ने दी हैं। अब समय आ गया है, अब समय कहता है कि वाचा सेवा बहुत की है, कर्मणा भी कर रहे हो, जब तक चांद से करते रहो इसको रोकना नहीं है। लेकिन मनसा इतनी शक्तिशाली बनती जाए, शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प इतने जमा होते जाएं, सार स्वरूप के संकल्प इतने स्थिर हो जाएं, ये स्थिर स्थिति, ये एक रस स्थिति ही उड़ती कला है। इसी से आप उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं, उड़ करके अन्य आत्माओं को अपनी शक्ति का सहयोग दे सकते हैं। तो हम सभी विस्तार को देखें, आप सब विस्तार में आए हैं, बड़े संगठन के बीच में आए हैं, और जहां विस्तार होता है वहां कुछ न कुछ नीचे ऊपर की बातें दिखाई और सुनाई देती हैं। कुछ न कुछ लगता है कि ये नहीं होना चाहिए और हो जाता है, हो रहा है। अगर ऐसी कोई बात दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, जहां कुछ बड़ा संगठन होता है, बड़ी बातें होती हैं, अनेक प्रकार की संस्कार वाली आत्माएं होती हैं, बहुत बड़ा विस्तार होता है, वहां कुछ न कुछ कमी दिखाई पड़ती है। लेकिन उसमें हम सार को ग्रहण करें, उसमें हम सार स्वरूप स्थिति में स्थित रहें कि इसमें भी हमारा भला है, इसमें भी कल्याण है, इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ये भी एक पाठ है अंतिम समय के लिए, जब हजारों की क्यू लगेगी, लाखों की क्यू लगेगी, उसमें और अभी 10-12-15 हजार की सभा में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत कुछ हम सब प्राप्त कर रहे हैं, बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। अगर इस स्वरूप में ज्ञान युक्त और राजयुक्त होकर के सार स्वरूप बनते जाते हैं तो आंतरिक खुशी को कोई भी बात नष्ट नहीं कर पाती, हमारी अंदर की खुशी को कोई बात छीन नहीं सकती। और अंदर की जिसके पास खुशी है, खुशी से संपन्न है, वो एक सेकंड में बाबा के पास पहुंच सकता है। यही उड़ती कला है। इसलिए समय की सूचना के अनुसार बाबा कहता है, समय की ये पुकार है कि अब सभी बाबा के बच्चे उड़ती कला के साधन को अपना लें, और इस साधन के द्वारा हर समस्या का, हर परिस्थिति का, आने वाले हर बड़े विघ्न का सहज रीति से सामना कर सकें, इतने शक्ति संपन्न बन जाएं जो एक सेकंड में हर परिस्थिति क्रॉस कर लें। तो हम सभी को बाबा ने इतनी शक्तियां दी हैं, इतना ज्ञान का खजाना दिया है, इतना योग की शक्ति दी है, गुणों की शक्ति दी है। अगर हम सभी योग युक्त, गुण युक्त, ज्ञान युक्त और राजयुक्त बनकर चलते हैं तो सहज ही हमारी उड़ती कला हो सकती है। ओम शांति।
जिंदगी की राहों से अंधेरा मिटाना है, जिंदगी की राह।